रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत एवं उसके अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह हुजरात की 12वीं और 13वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान लाने वालों, बहुत सी सोचों से बचो कि कुछ सोचें पाप होती हैं, और टोह में मत रहो और न तुम में से कोई पीठ पीछे किसी की निंदा करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? तुम्हें स्वयं इस बात से घिन आएगी। और ईश्वर से डरते रहो, निसंदेह ईश्वर तौबा स्वीकार करने वाला और दयावान है। हे लोगो, हमने तुम्हें एक पुरुष व स्त्री से पैदा किया और तुम्हारी बहुत सी जातियां और वंश बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। دوستوں آج گروار ہے، مرداد ماہ کی 19، محرم کی 23 اور اگست کی 10 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینی کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت آپ کاریکرم سنیں گے آج کی بات، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ تو دوستوں یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ کھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران اور دکشنی افریقہ نے دوپکشیہ سمبندھوں میں وستار پر بل دیا۔ سیریا کے راشٹرپتی نے ترکیے کے راشٹرپتی کی نئی شرطوں کو رد کر دیا۔ اسرائیلی سینکوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی یوا شہید ہو گیا۔ گیان ویپی مسجد پربندھن سمیتی نے اے ایس آئی سروے کی میڈیا کوریج پر روک کی مانگ اٹھائی۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور اختر رضوی سے وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑتنتر ایران کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ ایران کے ورودھ امریکہ کے ایک پکشی اور غیر قانونی پرتبندھوں کے باوجود ایران اور دکشنی افریقہ کے پاس انتراشٹری ادھیکاروں کی پریدھی میں ہمیشہ سے سمبندھوں کے وستار کے لیے انیک اوسر رہے ہیں۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے جو ایران اور دکشنی افریقہ کے سہیوگ کمیشن کی 15ویں بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پروٹوریا گئے تھے، دکشن افریقہ کے ودیش منتری نائلڈی پانڈورو کے ساتھ سنیکت پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران وگیان اور تکنیک کے شیتر سہت ارجا اور انیک شیتروں میں دکشن افریقہ کے ساتھ سہیوگ کا آدان پردان کرنے کو تیار ہے۔ ودیش منتری نے کہا کہ ایران اور دکشنی افریقہ کے سنیکت آیوگ کی بیٹھک میں دونوں دیشوں کے پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹر سہت انیک سنستھاؤں اور سنگھنوں کے پرتندھیوں نے 2 دن تک مہتوپورن بات چیت کی۔ اس اوسر پر دکشن افریقہ کی ودیش منتری نے بھی کہا کہ ایران کے ودیش منتری کے ساتھ شیتری انتراشٹری مدوں تتھا دوپکشی معاملوں پر وستار سے اچھی چرچا ہوئی اور انتراشٹری معاملوں میں دونوں دیشوں کے سنیکت درشٹیکون ہیں۔
ایران کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جس پرکار سے آتنکوادیوں کے ورودھ سنگھرش میں ہم نے سیریا کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح سے دمشق کے ورودھ چلائے جا رہے آرتک یدھ میں بھی ہم اس کا سہیوگ کریں گے۔ وہی جلال زادے نے کہا کہ سیریا پر تھوپے گئے آرتک یدھ میں ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ایران کی سنسد میں راشٹریہ سرکشا ایوم ودیش نیتی آیوگ کے پرمکھ کا کہنا ہے کہ سیریا پر تھوپے جانے والے آرتک یدھ میں ہم سیریا کی جنتا اور وہاں کی سرکار کا سمرتھن کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات دمشق میں سیریا کے ودیش منتری کے ساتھ بھینٹ میں کہی۔ جلال زادے کے انوسار دوپکشیہ سمبندھوں کو بڑھانے کے لیے ایران اور سیریا کے ادھیکاری سکاراتمک درشٹیکون رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوپکشیہ سہیوگ کے مارگ میں آنے والی ہر بادھا کو ہٹانے میں تہران اور دمشق پوری طرح سے گمبھیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس پرکار سے آتنکوادیوں کے ورودھ یدھ میں تہران نے دمشق کا ساتھ دیا، اسی پرکار سے ایران تھوپے گئے آرتک یدھ میں سیریا کے ساتھ سہیوگ کرتے ہوئے اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
سیریا کے راشٹرپتی بشار اسد کا کہنا ہے کہ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان جو شرط لگا رہے ہیں ان کے کارن میں ان سے بھینٹ وارتا نہیں کروں گا۔ اسکائی نیوز کے انوسار سیریا کے راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ ترکی راشٹرپتی اپنی شرط لگا کر سیریا میں موجود ترکی کے سینکوں کی اپستھتی کو وید درشانا چاہتے ہیں جو پوری طرح سے اوید ہے۔ بشار اسد کے انوسار سیریا میں اشانتی اتپن کرنے میں ترکی کا ہاتھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آتنکوادیوں نے سیریا کے بھیتر جس مول بھوت ڈھانچے کو نشٹ کر دیا، اسی کے کارن بہت سے سیرین پلائن کرتا اپنے دیش واپس نہیں آ پا رہے ہیں۔ بشار اسد نے کہا کہ وہی دیش جنہوں نے سیریا کے اندر اشانتی پھیلوائی وہ مادک پدارتھوں کی تسکری کے بھی ذمہ دار ہیں. عرب سنگھ کے سندرب میں سیریا کے راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ یہ سنگھ ابھی تک واسطو میں ایک سوتنتر سنگٹھن کے روپ میں پریورتت نہیں ہو پایا ہے.
سشستر تتووں کے ساتھ جھڑپ میں لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ کا ایک سدسیہ شہید ہو گیا. الاحد ویب سائٹ کے انوسار حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ حزب اللہ سے سمبندھت ایک ٹرک پر کچھ سشستر لوگوں نے حملہ کیا. اس حملے میں حزب اللہ کے ایک سدسیہ کو بہت چوٹیں آئی جس کے کارن اسے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا. اسپتال میں ان کی شہادت ہو گئی. حزب اللہ کے بیان کے انوسار یہ ٹرک دکشنی لبنان کے البقا کھیتر سے راجدھانی بیروت کی اور جا رہا تھا. راستے میں الکہلا میں ٹرک پلٹ گیا. حزب اللہ کے اس ٹرک کے پلٹتے ہی کچھ سشستر لوگوں نے اس کو چاروں اور سے گھیر کر اس پر حملہ کر دیا. اس حملے میں آکرمنکاری ایک سشستر ویکتی بھی مارا گیا. دونوں پکشوں کے بیچ جھڑپیں آرمبھ ہونے پر لبنان کی سینا نے وہاں پر پہنچ کر سشستر لوگوں کو ٹرک کے نکٹ پہنچنے نہیں دیا. اسی بیچ لبنان کے ایک منتری نجیب مکاتی نے گھٹنا کی جانچ کا آدیش دیا ہے.
فلسطین کے پشچمی نابلس کے کھیتر میں زائمنی سینا کے حملے میں ایک فلسطینی یوا احمد محمد خلیفہ شہید ہو گیا. پراپت رپورٹ کے انوسار زائمنی سینا نے پشچمی نابلس کے کھیتر زواتا میں حملہ کر کے ایک 27 ورشی فلسطینی یوا احمد محمد خلیفہ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. فلسطینی سرکشا سوتروں کے انوسار زائمنی سینکوں نے پشچمی نابلس کے کھیتر زواتا میں حملہ کیا تو فلسطینی یوواؤں کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہو گئیں. کھیتر میں زائمنی سینکوں کے سنائپر نے فلسطینی یوا کے سر پر گولی ماری جس سے وہ شہید ہو گیا. جاری ورش میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی سنکھیا 224 ہو گئی ہے.
گیانواپی پربندھن نے وارانسی میں ایک عدالت میں یاچیکا دائر کر کے مانگ کی ہے کہ اس کے سرویکشن کے میڈیا کوریج پر پرتیبندھ لگایا جائے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے انوسار وارانسی استھت گیانواپی مسجد میں نردھارت کرنے کے لیے سرویکشن کیا جا رہا ہے کہ کیا 27ویں شتابدی کی مسجد کا نرمان ہندو 17ویں شتابدی کی مسجد کا نرمان ہندو مندر کی پہلے سے موجود سنرچنا پر کیا گیا تھا. جولائی میں وارانسی کی ایک عدالت نے بھارتیہ پراتتو سرویکشن کو کاشی وشوناتھ مندر کے بغل میں استھت گیان ویاپی مسجد کا ویگیانک سرویکشن کرنے کا نردیش دیا تھا. اسے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ نے برقرار رکھا تھا. مسجد کا سروے عدالتی آدیش کے بعد 4 اگست کو شروع ہوا تھا. انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے سنیکت سچیو سید محمد یاسین نے کہا کہ کورٹ کے آدیش پر گیانواپی مسجد پریسر میں پراتتو سرویکشن کا کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سروے ٹیم یا اس کے کسی ادھیکاری کی اور سے اب تک کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے, لیکن اخباروں چینل اور سوشل میڈیا پر لگاتار بھرامک خبریں چل رہی ہیں.
سنگھرش پربھاوت منی پور میں سمودایوں کے بیچ بڑھتے اوشواس نے سرکشا بلوں کو بھی اس دائرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک تازہ گھٹنا کرم میں 40 میتئی ودھائکوں نے گروار کی وہ پردھان منتری نریندر مودی کو ایک گیاپن سونپا. گیاپن میں کہا گیا ہے کہ راج میں تعینات اسم رائفلس کے جوانوں کو واپس بلا لیا جانا چاہیے اور کچھ بھروسے مند کیندری بلوں کو تعینات کیا جانا چاہیے. یہ گیاپن وپکش دوارا لائے گئے اوشواس پرستاؤ پر پردھان منتری مودی کے جواب دینے کی سمبھاونا سے ایک دن پہلے آیا. کیندریہ گرہ منترالیہ کے سوتروں نے منی پور میں موجودہ استھتی کے لیے لوٹے گئے اسنکھیہ ہتھیاروں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ایک ورشٹھ ادھیکاری نے کہا ہے کہ سبھی پریاسوں کے باوجود لوٹے گئے بہت سے ہتھیار واپس نہیں آئے ہیں.
بھارت کی کیندر سرکار گروار کو ایک ودھیک پیش کرنے کے لیے تیار ہے جس میں پرستاؤ دیا گیا ہے کہ چناؤ آیوکتوں کا چین پردھان منتری کے نیتتو والی سمیتی دوارا کیا جائے گا, جس میں لوک سبھا میں وپکش کے نیتا اور ایک کیندریہ کیبنیٹ منتری شامل ہوں گے. الیکھنی ہے کہ یہ قدم اس سال مارچ میں شیرش عدالت کی سمویدھان پیٹھ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ چناؤ آیوکتوں کی نیوکتی راشٹرپتی دوارا پردھان منتری لوک سبھا میں وپکش کے نیتا اور بھارت کے مکھیہ نیادھیش کی سمیتی کی صلاح کے آدھار پر کی جانی چاہیے.
پاکستان میں سنسد کو بھنگ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کی صلاح پر اس دیش کے راشٹرپتی آصف راشد الوی نے وہاں کی سنسد کو بھنگ کر دیا. پاکستان کے سنچار مادھیموں کے انوسار اس دیش کے راشٹرپتی نے مدھیاودی چناؤ آیوجت کرائے جانے کے ادیش سے وہاں کی سنسد کو بھنگ کر دیا. اس حساب سے آگامی 90 دنوں کے بھیتر پاکستان میں چناؤ कराए जा सकते हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की ओर से मॉस्को पर हमले के उद्देश्य से दो आत्मघाती ड्रोन विमानों की तबाही की सूचना देते हुए कहा कि सेवास्तोपोल में भी यूक्रेन के 11 ड्रोन विमान मारकर गिराए गए हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को पर ड्रोन हमलों की पुष्टि मॉस्को के मेयर और रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई है। मॉस्को के मेयर के अनुसार हवाई रक्षा सिस्टम ने गुरुवार सुबह 4 बजे एक ड्रोन को कालुगा के क्षेत्र और दूसरे केंद्रीय राजमार्ग के ऊपर मार गिराया। दोनों ड्रोन बारूदी पदार्थ से लैस थे। रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि सेवास्तोपोल में भी यूक्रेन का एक बड़ा हमला नाकाम बनाया गया है और 11 ड्रोन विमानों को इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान सिस्टम द्वारा समुद्र में गिराकर तबाह किया है। रूस ने यूक्रेन के हमलों के जवाब में SU-34 युद्धक विमानों द्वारा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। नाइजर की सैन्य परिषद ने इस देश में सेना की छावनी पर फ्रांसीसी सैनिकों के आक्रमण की बात कही है। इस परिषद के अनुसार बुधवार को फ्रांस की सेना ने अपने घटक आतंकवादियों को स्वतंत्र कराने के लिए नाइजर की सैन्य छावनी पर हमला किया। माफ कीजिएगा। इस बीच अल जजीरा टीवी चैनल ने नाइजर की सैन्य परिषद के हवाले से रिपोर्ट दी है कि फ्रांस की सेना ने इस देश के लिपिताकु गोरम नामक क्षेत्र पर हवाई हमला करके जेल में बंद 16 आतंकवादियों को आजाद करा लिया। हमला करने के बाद फ्रांसीसी जहाज चार्ट चले गए। याद रहे कि नाइजर के राष्ट्रपति गार्ड के बलों ने 26 जुलाई को इस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बाजूम को राष्ट्रपति भवन में नजरबंद करके उनको उनके पद से अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद 1 अगस्त को पश्चिमी अफ्रीकी संगठनों के संगठन एकवास ने नाइजर के राष्ट्रपति को 8 दिनों के भीतर उनके पद पर आसीन नहीं किया गया तो इस संगठन की ओर से नाइजर पर हमला किया जाएगा। नाइजर के विरोधी गुट ने इसकी कोई परवाह नहीं की कि अपदस्थ राष्ट्रपति को उनके पद पर वापस नहीं किया।
उत्तरी कोरिया के नेता ने अपने देश की सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस देश के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में शत्रु का मुकाबला करने के लिए जवाबी प्रभावी कार्रवाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने सेना से युद्ध की हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने पवित्र धार्मिक स्थलों की रक्षा करने वालों को धर्म का वास्तविक रक्षक बताया है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो धार्मिक मूल्यों की रक्षा करते हैं और यहाँ तक कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। पेश है एक समीक्षा कायम रिजवी की जबानी।
राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि मुदाफईन हरम अर्थात पवित्र स्थलों के रक्षक ही इस्लाम के वास्तविक संरक्षक हैं। ईरान के राष्ट्रपति के अनुसार इस्लामी मूल्यों की रक्षा करते हुए ये रक्षक ईश्वर के मार्ग में शहीद हो जाते हैं। सैयद इब्राहिम रईसी ने बुधवार को शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद हाज हुसैन हमदानी की याद में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि पवित्र स्थलों के रक्षकों ने पवित्र स्थलों की रक्षा के साथ ही साथ देश की संप्रभुता की भी रक्षा की है। यही कारण है कि आज उनकी याद मनाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इस्लामी गणतंत्र ईरान क्षेत्रीय देशों में बढ़ती अशांति का साक्षी रहा है, जिनमें अफगानिस्तान, इराक और सीरिया का नाम लिया जा सकता है। इसी अशांति की कोख से दाइश नामक आतंकी गुट ने जन्म लिया। ये आतंकी संगठन बाद में न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरे में परिवर्तित हो गया। इसने ईरान की शांति को भी प्रभावित किया तथा क्षेत्र में उभरने वाली प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाइयां आरंभ की, जिनका मुख्य उद्देश्य अवैध ज़ायोनी शासन के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र तैयार करना था। सन 2011 में जब आतंकवादी गुट दाइश ने इराक और सीरिया में अपने पैर फैलाने शुरू किए और वहां पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को नष्ट करना आरंभ किया, तो ईरान से इस आतंकी गुट से मुकाबला करने का अनुरोध किया गया। इसी अनुरोध का जवाब देते हुए जनरल कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में प्रतिरोध के जियालों ने इराक और सीरिया का रुख किया। जिस समय दाइश के आतंकवादी क्षेत्र में विशेषकर इराक तथा सीरिया के भीतर खून की होली खेल रहे थे, उस समय क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा मौन धारण करके दाइश का समर्थन किया जा रहा था। इन हालात में न केवल इस्लामी गणतंत्र ईरान ही वो देश था जिसने इराक और सीरिया की सहायता के लिए कदम आगे बढ़ाए। ईरान ने पूरी सूझबूझ और दूरदर्शिता से दाइश की बढ़त को रोका और इस आतंकी संगठन द्वारा हड़पे गए क्षेत्रों को उसके चुंगल से निकलवाने में पूरी मदद की। इस कार्रवाई में बहुत से जियालों ने अपनी जानें न्योछावर की, जिनमें सबसे प्रमुख शहीद कासिम सुलेमानी, हाज हुसैन हमदानी और शहीद मोहसिन होजजी का उल्लेख किया जाता है। पवित्र स्थलों के रक्षकों के परिवार के सदस्यों के साथ भेंट में ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनेई ने कहा था कि अगर वे न होते तो हम अब भी इन दुष्ट आतंकवादियों से संघर्ष कर रहे होते। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस शांति एवं सुरक्षा से हम लाभान्वित हो रहे हैं वो पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले बलों के बलिदान का ही परिणाम है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
पिछले कुछ दशकों के दौरान मध्य पूर्व में होने वाली प्रॉक्सी वार्स में एक के बाद एक में मिली पराजय के बाद एक बार फिर अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने दखल में वृद्धि कर दी है। अमेरिका जो इन पराजयों से हताश होकर अपना बोरिया बिस्तरा लपेट रहा था, एक बार फिर उसने इस इलाके में दिलचस्पी बढ़ा ली है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने 8 अगस्त को संयुक्त अरब इमारात के शासक मोहम्मद बिन जायद से अबू धाबी में भेंट वार्ता की। हालिया 2 सप्ताहों में पश्चिम एशिया में अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा अधिक हो गई है। पिछले महीने जैक सलिवन सऊदी अरब गए थे, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भेंट वार्ता की थी। अभी कई दिन पहले पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिक कमान सेंटकॉम के कमांडर जनरल एरिक कोरिला ने भी संयुक्त अरब इमारात की यात्रा की थी और वहां पर उन्होंने परस्पर रुचि के विषयों विशेषकर सुरक्षा के संबंध में वार्ता की थी। अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन दोबारा संयुक्त अरब इमारात की यात्रा पर गए हैं, जहां कल उन्होंने इमारत के शासक मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की और परस्पर रुचि के विषयों विशेषकर द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। अमेरिकी अधिकारी क्षेत्रीय देशों की अपनी यात्राओं का औचित्य दर्शाते हुए कहते हैं कि पश्चिम एशिया की उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करना है, परंतु उनके क्रियाकलाप इस बात के सूचक हैं कि वे न केवल क्षेत्रीय बल्कि दुनिया के बहुत से देशों व इलाकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं और इस समय दुनिया के बहुत से इलाके में जो लड़ाइयां व युद्ध हो रहे हैं वे अमेरिका के परोक्ष व अपरोक्ष हस्तक्षेप के परिणाम हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि आज रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो अमेरिकी नीतियों और उसके हस्तक्षेप का परिणाम है, और अगर अमेरिकी हस्तक्षेप न होता तो ये युद्ध बहुत पहले बंद हो चुका होता। परंतु अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और अब तक वो कई अरब डॉलर की यूक्रेन की सैन्य सहायता भी कर चुका है, और जानकार हलके अमेरिका के सैनिक पैकेज को आग में घी डालने वाले पैकेज के रूप में देखते हैं। और रूसी अधिकारी भी बारंबार कह चुके हैं कि अमेरिका और दूसरे देश यूक्रेन की जो सैन्य सहायता कर रहे हैं वो युद्ध के लंबा खींचने का कारण बन रही है। प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पिछले 10 महीनों के दौरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार से कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी हाल ही में कहा था कि अरब इमारात ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। अभी कुछ समय पहले अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की ओर संकेत करते हुए लिखा था कि इस तनाव का मुख्य कारण इस बात को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा है कि क्षेत्र में किसका प्रभाव अधिक है और किसकी पोजीशन बेहतर है, विशेषकर उस हालत में जब क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव कम हो गया है और मोहम्मद बिन सलमान भी ये सोचते हैं कि अब उन्हें बिन जायद के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। बहरहाल सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात दोनों अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रतीत यह हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के प्रयास हैं। साथ ही जैक सुलिवन की पश्चिम एशिया की यात्रा का एक लक्ष्य इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी हो सकता है, क्योंकि इन देशों का रुझान अमेरिका की तुलना में चीन की ओर अधिक होने लगा है।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात,
श्रोताओ कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता के मुद्दे पर। भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता गुजरात की कोर्ट के फैसले के चलते चली गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के फैसले को अनुचित ठहरा दिया और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे पहलू और ढेरों बहसें हैं, इनमें से कुछ पर हम नजर डालेंगे। मगर एक दृश्य बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है राहुल गांधी की सदन में वापसी का। उनकी वापसी का केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि इंडिया के नाम से बने विपक्षी दलों के अलायंस ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को रोक दिया था। इसी साल 24 मार्च को गुजरात में सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने के साथ ही गुजरात की अदालतों के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का हम स्वागत करते हैं।
आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है, इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके तहत, और मैं तहदिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा, चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं।
इस मौके पर राहुल गांधी ने भी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई तो सदन के भीतर भी विपक्षी दलों में भारी उत्साह था और जोरदार नारे लग रहे थे। नारेबाजी इतनी हुई कि संसद को स्थगित करना पड़ा।
सर मैं कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये राज्य सरकार का काम होता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहां का काम होता है, और इसको फाइनेंशियली मदद करना,
आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये नारेबाजी का स्थान है। प्रश्नकाल समय के अंदर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप चर्चा कराएं, संवाद करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार की जवाब देते कर सकते हैं। आप यहां नारेबाजी करने आते हैं। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सर मैं कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये राज्य सरकार का काम होता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहां का काम होता है और इसको फाइनेंशियली मदद करना।
राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं?
30,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा।
इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई। गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उनका इरादा किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का नहीं था। मार्च 2023 में सूरत में कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर यह एतराज था कि अदालत ने फैसला लिखने में पन्ने तो खूब खर्च कर दिए लेकिन मानहानि के मामले में अधिकतम सजा देने की वजह नहीं लिखी। एक बहस भारत की मोदी सरकार को लेकर है कि उसने राहुल गांधी के मामले में जिस तरह तत्काल संसद सदस्यता भंग की और उनसे सरकारी आवास खाली करवाया, उससे साफ संदेश ये गया कि सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज कुचल देना और उन्हें अपमानित करना चाहती है। इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात गुजरात राज्य की अदालतों के काम करने के तौर तरीके और उनके फैसलों को लेकर कुछ विशेषज्ञ उठा रहे हैं। भारत के बुजुर्ग और जाने माने टीकाकार श्रवण गर्ग हैं। वो इस मसले पर बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हैं।
पूरा देश और पूरी दुनिया जो है वो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण कई कारणों से है। सबसे बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही न्यायपालिका की एक अंग से पूछा है कि आप बताइए कि आपने ये जो सजा दी है 2 साल की, इसका आधार क्या है। 2 साल तक की सजा में उन्होंने 2 साल की दे दी। अगर कानून में 20 साल तक की सजा होती तो 20 साल दे देते, अगर 50 साल की होती तो 50 साल, अगर आजीवन कारावास होता तो आजीवन कारावास। दूसरा ये मतलब ये एक बड़ी टिप्पणी है और वो जो सूरत की अदालत है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आधार, क्योंकि ये मामला चालू अब हुआ है। ये मामला ऐसा नहीं है कि इसका निराकरण हुआ है अभी, इसका ये अब चालू हुआ है और ये आने वाले तमाम सालों के लिए प्रेसिडेंस लोकतंत्र का बनाने वाला है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो ये कि मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, वायनाड के जिन लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में मतदान किया ये उनके अधिकारों का भी मामला है। वायनाड में कोई 13 लाख मतदाता हैं, उनमें कोई 11 लाख ने मतदान किया और उसका 64% राहुल गांधी को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में 63% मतदाताओं ने वोट दिया, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं का राहुल गांधी के प्रति ज्यादा यकीन था। ये जो दो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण हैं। 11 जून 1975 को, अगर तारीख सही है तो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने जब इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया होगा या करने वाले होंगे या फैसला लिख रहे होंगे, तब उनको ये अंदाज नहीं रखा होगा कि अगर वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे इंदिरा गांधी को तो ये क्या कर सकती हैं, देश की तकदीर किस तरह से बदल सकती है।
भारत के लिए कहा जाता है कि वहाँ की खूबसूरतियों में एक लोकतंत्र है और इसी तरह वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब। राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए न्यायालय की मदद से अपनी लड़ाई जीतते हैं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपना अधिकार वापस लेते हैं, तो ये लोकतंत्र की सुंदरता है जो संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन इस तरह तय करती है कि चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया से कोई भी पदाधिकारी और संस्था बाहर न रहे। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
आप सुन रहे रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर रिज़वी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
हर दिन जो गुजरता है हम ईरान के खिलाफ दुश्मनों द्वारा नए नए प्रतिबंधों का सामना करते हैं। इनमें से कुछ प्रतिबंध वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्रों पर दबाव डालने के लिए होते हैं तो कुछ छात्रों और बुद्धिजीवियों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए होते हैं। इसी तरह प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका और यूरोप ईरान के कुलीन वैज्ञानिक वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इन सभी रुकावटों और बाधाओं के बावजूद अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश की पूरे दिल से सेवा करते हैं और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन, वित्तीय और वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। हम आज के अपने कार्यक्रम में ईरान की सफल महिलाओं की इस कड़ी के जरिए कुलीन ईरानी डॉक्टर श्रीमती तनाज बहरी से आपका परिचय कराएंगे।
तनाज बहरी का जन्म वर्ष 1982 में तेहरान में हुआ था। वो लगभग 10-11 वर्ष की थी तभी अपने परिवार के साथ नीदरलैंड जाकर बस गई थी। वो रोटरडम शहर के पास के एक कस्बे में पली बढ़ी और उन्होंने रोटरडम शहर में ही अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई की। सामान्य चिकित्सा की शिक्षा पूरी करने के बाद श्रीमती बहरी ने हेमाटोलॉजी अर्थात रक्त शास्त्र और ल्यूकेमिया अर्थात खून के कैंसर के विशेषज्ञ के तौर पर वर्ष 2015 में अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने इरास्मस हॉस्पिटल में नौकरी की पेशकश दी गई जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक साल और कुछ महीनों के बाद नीदरलैंड के रोटरडम में इरास्मस अस्पताल में हेमाटोलॉजी क्लिनिकल के प्रमुख होने के बाद श्रीमती तनाज बहरी ने अपना 10,000 यूरो का वेतन छोड़ दिया और जैसे ही उनके दस्तावेज तैयार हुए वे ईरान लौट आईं।
श्रीमती बहरी के लिए अपने देश में सेवा करना और ईरान के नाम के आगे अपना नाम जोड़ना महत्वपूर्ण था। वो इस बारे में कहती हैं कि मुझे अपने देश का कर्ज चुकाना था, अपने देश के लोगों की सेवा करनी थी। नीदरलैंड में मेरे मासिक वेतन का 45% टैक्स के रूप में लिया जाता था और इस टैक्स का एक बड़ा हिस्सा इसराइल जैसे आतंकवादी शासन पर खर्च किया जाता था। मासूम और मजलूम बच्चों के नरसंहार का खर्च जो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। मुझे अपने वतन वापस लौटना था, मुझे अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना था। हालांकि तनाज बहरी का जन्म एक ईरानी और मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन एक गैर इस्लामी देश में उनकी परवरिश ने उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी से दूर रखा था। वहीं उनकी टीचर्स द्वारा इस्लाम धर्म को लेकर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो इस्लाम धर्म के संबंध में वास्तविक और अधिक जानकारी प्राप्त करें।
दोस्तों, श्रीमती तनाज बहरी इस बारे में कहती हैं कि ईश्वर दुनिया में हर जगह लोगों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सही रास्ता चुनने का मौका देता है। बचपन से ही मेरे मन में ये सवाल उठते थे कि इस दुनिया में जीने का उद्देश्य क्या है और हमें आखिर क्यों जीना चाहिए। इन सवालों के साथ साथ जीवन में घटने वाली घटनाओं ने मेरा झुकाव इस्लाम की ओर और बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पर एक दिन हमारे शिक्षक ने दुनिया के अन्य धर्मों के बारे में बात की और जब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो उन्होंने अपमानजनक और कटाक्ष करते हुए कुछ बातें कहीं जिस पर वास्तव में मुझे आश्चर्य और दुख हुआ कि मुसलमानों और उनके पैगम्बर का इतना अपमान क्यों किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं थी इसीलिए मुझे क्लास में चुप रहना पड़ा।
बहरी कहती हैं कि हर दिन कोई ना कोई घटने वाली घटनाओं ने मुझे इस्लाम पर अधिक से अधिक गहराई से शोध करने और उसके करीब जाने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर मैं ईश्वर के जितना करीब होती गई मुझे उतनी ही शांति महसूस होने लगी और ईश्वर ने मेरी जीवन के सभी मामलों में बहुत मदद की। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व और उसके प्रेम को महसूस करता है तो वो ईश्वर के बिना नहीं रह सकता, फिर कभी भी उसके वजूद को नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर तनाज बहरी की जिनका विश्वास पूरी तरह निश्चित हो चुका था वो ईरान लौटने के बाद एक स्वयंसेवी समूह में शामिल हो गईं जो मरीजों का इलाज करने के लिए जाबुल शहर गईं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा है कि हुवत तबीब, इस साल हमारे भाग्य में ईद उल फित्र मनाने के लिए एक ऐसी जगह लिखी थी कि जहाँ के लोग मेहमान नवाज होने के साथ साथ बहुत ही मिलनसार और बहादुर हैं, इसलिए इस इलाके को दयारे रुस्तुम भी कहा जाता है। मेरी मुराद ईरान के ऐतिहासिक शहर जाबुल और उसके आसपास के गांव और खानाबदोश क्षेत्रों से है।
श्रीमती बहरी कहती हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो लोग वंचित क्षेत्रों में रहते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा धैर्य होने के साथ साथ वे असीम रूप से बड़े और दयालु हृदय वाले होते हैं। स्वयं सेवी ईश्वरों के साथ ही मेरा पहला अनुभव था। हालांकि मेरे पास तेहरान के शरीयती अस्पताल में पूरे ईरान के मरीजों को देखने का मौका है जो अपने आप में मुझे एक विशेष संतुष्टि की अनुभूति देता है, लेकिन उन्हीं लोगों को उन्हीं के इलाकों, घरों और क्षेत्रों में जाकर देखने का एक अलग ही अनुभव था। इस तरह हिजाब को लेकर श्रीमती तनाज बहरी का कहना है कि आज ये साबित हो गया है कि अपने आप को ढकना, जिसे कुछ लोग मजबूरी समझते हैं और महिलाओं की प्रगति और विकास में बाधक मानते हैं, एक प्राकृतिक मुद्दा है और इसका मानव के मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। हिजाब एक महिला के लिए प्रकृति का नियम है और प्राकृतिक कानूनों को तोड़ना एक महिला को उसकी पहचान से वंचित करता है।
श्रीमती बहरी हिजाब पहनने के अपने निर्णय के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि मेरे लिए हिजाब सिर्फ ईश्वर की ओर से एक धार्मिक आदेश नहीं था, हिजाब मेरे लिए एक संघर्ष था, आधुनिक अरब परंपरावाद के खिलाफ एक चौतरफा संघर्ष जो खुद को महिलाओं का मालिक मानते हैं और उन्हें जो चाहे नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह हिजाब पूरी दुनिया पर अपनी मानसिकता को थोपने का प्रयास करने वाले पश्चिम के उस अहंकार और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष है जिसके चंगुल में दुनिया फंसी हुई है। साथ ही पश्चिम की उस संस्कृति और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो महिलाओं को कारोबार के सिवा कुछ नहीं समझती है। साथ ही हर सुबह जब मैं अपने सिर पर हिजाब के नाम का कपड़ा डालती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया केवल हमारे कर्मों को मापने के लिए एक तराजू है। साथ ही हिजाब मुझे अपनी इच्छाओं पर काबू पाने का रास्ता दिखाती है, इसीलिए हिजाब मेरे लिए हमेशा से पवित्र और मूल्यवान था।
श्रीमती तनाज बहरी कहती हैं कि जब मैंने अपना शोध शुरू किया तो मेरा विश्वास कमज़ोर था और मैं हिजाब को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। जब मैं एक छात्रा थी तो मैं हिजाब पहनना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी क्योंकि मैंने डच लोगों को कभी हिजाब पहनते हुए नहीं देखा। अपनी पाकिस्तानी या अफगानी दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं भी हिजाब पहनती हूँ तो मेरे व्यवहार और शब्दों को और अधिक बारीकी से देखा जाएगा और ये मेरे लिए एक भारी जिम्मेदारी होगी। श्रीमती बहरी हिजाब के महत्व को समझती हैं और उसका पालन करना शुरू करती हैं। उनको इसमें कई साल लग गए। इस बारे में वो खुद बताती हैं कि मेरे कुछ मुस्लिम दोस्तों ने कहा कि तुम हिजाब को बहुत कठिन काम समझ रही हो, हिजाब पहन लो, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन मुझे डर लगता था। मैं अपनी कमियों के साथ हिजाब की पवित्रता और मूल्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने से डरती थी।
तनाज बहरी बताती हैं कि मुझे कई बार उन हिजाब पहनने वाली महिलाओं की वजह से बातें सुननी पड़ी हैं कि जो हिजाब तो पहन लेती हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं करती हैं, क्योंकि हिजाब केवल कपड़े के एक टुकड़े का अपने शरीर पर डालने का नाम नहीं है, बल्कि हिजाब अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखने का नाम है। क्योंकि हम चाहें या न चाहें, जब हम हिजाब में होते हैं तो समाज में हमारे व्यवहार के लिए हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, और अगर गैर मुस्लिम समाज हो तो वो जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए उन वर्षों में मैंने अपनी नैतिकता पर काम किया और अपने काम में सफल होने की कोशिश की ताकि मेरे सहयोगी अकादमिक और नैतिक रूप से मेरे साथ काम करने से संतुष्ट हों, और फिर मैंने हिजाब पहनने का फैसला कर लिया। ईरानी महिलाएं आज पूरी आज़ादी और अपनी मर्जी से हिजाब को पहनती हैं और उनका अपने धर्म के प्रति विश्वास भी उसी स्वतंत्रता के साथ है। ईरानी लड़कियां कोई काम मजबूरी में नहीं करती हैं, बल्कि वे अपनी स्वेच्छा से उसे अंजाम देती हैं।
श्रीमती तनाज बहरी ईरान को अपनी मातृभूमि के रूप में प्यार करती हैं और अपने देश की तुलना ईश्वरीय दूत हजरत नूह की नाव से करते हुए कहती हैं कि आज ईरान की इस्लामी क्रांति ऐसी स्थिति में है जहां वो दुनिया को सच्चाई की ओर आमंत्रित करती है और साथ ही वो वैश्विक अहंकार और पश्चिम के दमन और दबाव में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वर्षों से एक सूखी और बंजर भूमि में एक नाव बना रहे थे। भले ही उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को ईश्वर की ओर आमंत्रित करने के अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। इसी तरह इन वर्षों के दौरान इस्लामी क्रांति भी इसी प्रक्रिया से गुजरी है और दुनिया के प्रति उदासीन नहीं रही और साम्राज्यवादी शक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी रही। प्रतिरोध के इस रास्ते में बहुत बड़ी संख्या में बलिदान भी दिए, लेकिन अपने मजबूत इरादों से कभी भी पीछे नहीं हटी। मेरी राय में जो कोई भी इस नाव पर सवार होता है वो कामयाब रहेगा और विजयी रहेगा, और जो कोई भी इससे दूर रहता है वो तो जीत के अवसर को खो देगा। मैं इस्लामी क्रांति की पवित्र नाव में सवार होना चाहती थी, मैं अपने देश के निर्माण में हिस्सा लेना चाहती थी, और मैं ईमानदारी से कहती हूँ कि मैं अपने देश के लोगों की सेवा करने के इरादे से ही ईरान लौटी हूँ।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान और दक्षिण अफ्रीका ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति की नई शर्तों को रद्द कर दिया है और इसराइली सैनिकों की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी युवा शहीद हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने ASRI सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग उठाई है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 0098-9035-06-5492। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। अख्तर रिजवी और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔